यशाया अध्याय 47। अध्याय 47 में परमेश्वर बाबुल पर आने वाले दंड के विषय में कह रहा है। ये सब बातें इसराइल पर बाबुल के आक्रमण से पूर्व की है। परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया था कि बाबुल उनको जीत लेगा, परंतु वो अत्याचार जो बाबुल उनको देगा उसके बदले में परमेश्वर अवश्य उसे भी दंड देगा। यशाया अध्याय 47 पद 1 से लेकर 3 तक। हे बाबुल की कुमारी बेटी, उतरा और धूली पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले, और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ग्रहण ना करूंगा। वो उन पर दंड देने वाला परमेश्वर प्रकट होगा। यशाया अध्याय 47 पद 4 से लेकर 6 तक। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इसराइल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि तो अब राज्य राज्य की स्वामिन ना कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया ना की, बूढ़ों पर तूने अपना अर्थात अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति। यशाया अध्याय 47 पद 6। अत्यंत भारी जुआ रख दिया। बाबुलवासी अपने बंधुआ दासों पर दयालु नहीं थे, वे बंदी इसराइलियों के साथ अत्यधिक कठोर थे। यहां तक कि वृद्ध पुरुषों पर भी वे भारी बोझ लादते थे। वे उन्हें बंधुआ दास बना चुके थे, वे उनसे अथक परिश्रम करवाते थे। अतः उनके इस व्यवहार के कारण परमेश्वर ने कहा, यशाया अध्याय 47 पद 7 से लेकर 10 तक। तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी, सो तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और ये भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा की नाई ना बैठूंगी और ना मेरे लड़के बाले मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनों और तेरी भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। यहां परमेश्वर उस दंड का उल्लेख कर रहा है जो वो बाबुल को देगा, क्योंकि उन्होंने इसराइल के साथ अनुचित व्यवहार किया है। आपको ध्यान होगा कि यीशु ने क्या कहा था जब वो फिर से पृथ्वी पर आएगा। मत्ती अध्याय 25 32 से 40 पद। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। अतः सब जातियां परमेश्वर के जनों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दंड पाएंगी। उत्पत्ति 12 अध्याय 3 पद। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। मती 25 अध्याय 41 से 45 पद। तब वो बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। यद्यपि परमेश्वर यहूदियों से क्रोधित था, और कारण ये था कि उन्होंने झूठे देवताओं की उपासना करके उसका नाम अपवित्र किया था, इसलिए उसने उन्हें दंडित करने के लिए बाबुल के हाथ में दे दिया था। परंतु उनके साथ बाबुल वासियों के दुर्व्यवहार के कारण परमेश्वर का दंड और भारी हाथ उन पर आएगा। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए कि बाबुल के गर्व की बात क्या थी, कि उनका राज्य स्थिर रहेगा, मैं सर्वदा स्वामिनी बनी रहूंगी। बाबुल का राज्य सदा सर्वदा का है, मैं विधवा की नाई ना बैठूंगी और ना मेरे लड़के बाले मिटेंगे, हमारे पति युद्ध में कभी मारे नहीं जाएंगे, हमें विधवा का दुर्भाग्य कभी देखने को ना मिलेगा। परमेश्वर ने कहा, तूने ये घमंड किया है और ये सब कुछ कहा है, तूने भोग विलास जीवन बिताया है, तू निश्चिंत रही है, परंतु क्षण भर में, एक ही रात में तू विधवा और संतानहीन दोनों हो जाएंगी। आपको ध्यान होगा, नबुकदनेस्सर ने ऐसा देखा जिससे उसका मन बहुत व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई, परंतु वो जानता था कि वो एक महत्वपूर्ण स्वप्न था। अतः उसने अपने सब विद्वानों को, खगोल शास्त्रियों को और भविष्य बताने वालों को बुलवाया था कि वे उसके स्वप्न का फल समझा दें। कहने का अर्थ यह है कि उस युग में खगोल शास्त्री बड़े सक्रिय थे। पद 13 में हम उनका कुछ आनंद लेंगे। वहां खगोल शास्त्र बहुत महत्व रखता था। वे सितारों को अध्ययन करके आपके जीवन पर उनके प्रभाव के अनुसार आपका भविष्य फल बता सकते थे कि आप कब क्या करें। अंत में दानियल को लाया गया। दानियल ने उससे कहा, हे राजा, जब तुझको पलंग पर ये विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांगे पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। इस रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। नेबुकदनेज़र, तू सोने का सर है, परंतु तेरा राज्य एक छोटे राज्य द्वारा हटाया जाएगा, क्योंकि चांदी सोने से कम होती है। उस राज्य को भी हटाने वाला उससे छोटा राज्य होगा, क्योंकि पीतल सोने से कम होता है। उसको लोहे का राज्य हटाएगा जो कठोर होता है और सबको चूर चूर कर देता है। ये अंतिम राज्य होगा जो 10 राजाओं का मित्र राज्य होगा, क्योंकि लोहा और मिट्टी एक साथ दिखाई दिए हैं। उसमें लोहे की सी शक्ति तो नहीं होगी, परंतु 10 राजाओं का संगठन अवश्य होगा, और इन 10 राजाओं के राज्य के युग में स्वर्ग का प्रभु आकर अपना राज्य स्थापित करेगा, जिसका अंत कभी न होगा। नेबुकदनेज़र ने कहा, दानियल 2:47 पद, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, परंतु मन फिराकर आज्ञा दी कि 90 फुट ऊंची सोने की मूर्ति बनाओ। परमेश्वर ने जो कुछ अपने बारे में उस पर प्रकट किया था उसके लिए ये मूर्ति एक चुनौती थी। आज अनेक जन है जो ये उद्घोषणा करते हैं कि स्वर्ग के परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, परंतु वे जाकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं, वे उसे चुनौती देते हैं। नेबुकदनेज़र भी तो अपनी विशाल मूर्ति बनवाकर परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। जैसा यशया ने कहा कि उनकी धारणा कुछ ऐसी हो गई थी कि वे सोचने लगे, बाबुल सदा काल तक स्थिर रहेगा, उसका नाश कभी न होगा। बाबुल अजय है, वो एक अनंत राज्य है, वो सदा काल तक न्याय करेगा। परंतु इसके लिए क्या भविष्यवाणी यहां देखने को मिलती है? एक पल में, एक ही दिन में वो राज्य गिर जाएगा, उसका पतन होगा। जिस समय दानियल राजा बेलशेजर के लिए, दानियल 5:25-28 पद, मैंने तकेल उफारसिन, इस लेख का अर्थ ये है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। उसी रात फारस का राजा खुसरू बाबुल की शहरपना के नीचे से आया, जहां उसने फरात नदी का प्रवाह अन्य दिशा में करके मार्ग तैयार किया था। उस रात बेलशेजर और उसके समस्त नवाब मार डाले गए। यशिया की यह भविष्यवाणी राजा कुसरू के जन्म से 150 वर्ष पुरानी है। वो बाबुल के इस स्वभाव का वर्षों पूर्व वर्णन कर रहा है कि वे यहोवा की प्रजा पर दया नहीं दर्शाएंगे, अतः बाबुल का न्याय किया जाना आवश्यक है। वे एक ही पल में, एक ही दिन में अपनी संतानों की तबाही को और स्त्रियां अभागिन होने का अनुभव करेंगी। परमेश्वर पद 9 में कहता है, सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। अपने टोने और भारी भारी तंत्र मंत्रों पर निर्भर करके उन्होंने दुराचार में आस्था रखी। उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। कितनी बार हम भी ये सोचते हैं कि हमने पाप तो गुप्त में किया है। हम कहते हैं, किसी ने तो देखा नहीं है। जब नबूकदनेज़र राजा अपने बगीचे में टहल रहा था, उसे ये कहते हुए आवाज सुनाई दी, देखने वाले तुझे देख रहे हैं, तू गुप्त में काम नहीं कर रहा है, तू काटा जाएगा। और उसने आकर दानियल से पूछा, इसका मतलब क्या है? दानियल ने कहा, सावधान रहना है राजा, तूने घमंड के कारण स्वयं को परमेश्वर से ऊपर उठाया है, इसलिए तेरे प्रति बुरा होने वाला है। क्योंकि उसने अपनी सोने की मूर्ति बनवाई थी, वो परमेश्वर से ऊंचा उठने का प्रयास कर रहा था, वो घमंड से भर गया था। अतः दानियल ने उसे सलाह दी कि वो परमेश्वर के सामने विनम्र हो, जिससे कि पृथ्वी पर उसके जीवन के दिन अधिक हो। इस कारण वो एक वर्ष तक नम्र रहा और उसने अपना व्यवहार उचित रखा। परंतु एक वर्ष के अंत में वो अपने राजभवन की छत के बगीचे में टहल रहा था, जिसे हैंगिंग गार्डन कहते हैं, जो प्राचीन युग के 7 अजूबों में से एक है। तब उसने कहा, क्या ये वो वैभवशाली बाबुल नहीं है जिसका निर्माण मैंने किया? उस समय उसने ये आकाशवाणी सुनी, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल या वर्ष तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे वो चाहे उसे दे देता है। नबूकदनेज़र वास्तव में पागल हो गया था। वो जंगल में पशुओं की नाई आवाज निकालता था, उसके बाल उकाब पक्षियों के परों की नाई और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों की नाई बड़े हो गए थे। वो 7 ऋतुओं तक ऐसा ही रहा, जब तक कि उसने ये जान लिया कि स्वर्ग का परमेश्वर ही पृथ्वी पर राज करता है और वही राज्यों को स्थापित करता है और उन पर अपनी इच्छा के अनुसार शासक नियुक्त करता है। अतः आप यह न सोचे कि कोई नहीं देखता है, परंतु देखने वाले हैं, परमेश्वर तो देखता ही है। यशाया अध्याय 47 पद 10 से लेकर 13 तक। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है, उपयोग में ला, संभव है कि तू उन सब से लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। आपको ध्यान होगा कि नबूकदनेस्सर ने अपने ज्ञानियों, परामर्शदाताओं को, भविष्य देखने वालों को, खगोल शास्त्रियों आदि सबको बुलवाया था। यहां फिर से यशाया अध्याय 47 पद 13। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। आज जिस विज्ञान के युग में हम रह रहे हैं, उसके बारे में मैं बड़ा अचंभा करता हूं। हमने कैसी उपयोगी वैज्ञानिक उन्नति की है। हम जिस जगत में रहते हैं, उसके बारे में हमने बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि इस वैज्ञानिक विकास के युग में समाचार पत्र राशि फल अब भी छापते हैं, जो एक अंधविश्वास है, और ये अंधविश्वास बाबुल के इस युग से चला आ रहा है। ये मनुष्य के जीवन का विवरण देता है और उसके अग्रिम जीवन के उतार चढ़ाव का पूर्व ज्ञान प्रदान करता है तथा अच्छे चिन्हों आदि का संकेत देता है। ये सब अंधविश्वास है कि सितारों और सितारों की अवस्था हमारे जीवन पर अज्ञात प्रभाव डालती है। कुछ लोग आकाश मंडल के सितारों के आधार पर अपने क्रियाकलाप को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, परंतु लोगों को किसी न किसी बात में विश्वास तो करना ही है। और ये आश्चर्य की बात है कि जब लोग परमेश्वर का त्याग कर देते हैं, तब वे मूर्खता की बातों में विश्वास करते हैं। आपको ध्यान होगा कि बाइबल स्पष्ट बताती है, रोमियो पहला अध्याय 22 पद, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जिस पल आप परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं, उसी समय आप मूर्खता का कार्यकलाप के लिए झुक जाते हैं। यदि मनुष्य परमेश्वर का त्याग कर दे, तो वो अत्यधिक मूर्खता की बातों पर विश्वास करने लगता है। दूसरा तिस्लोनिकियों दूसरा अध्याय 11 पद, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। आप परमेश्वर में विश्वास नहीं रखना चाहते हैं? ठीक है श्रीमान बुद्धिमान जी, हम आपको दिखाएंगे कि आप कितने बुद्धिमान हैं। परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है कि वे उन मूर्खता भरी निर्बुद्धि की बातों को और ठट्टों की बातों में विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है। मैं ये सब देखता हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा करने से आप समस्या में नहीं पड़ेंगे? स्वयं को बुद्धिमान जताने वाले लोगों के क्रियाकलाप और कामों को देखकर मैं सोचता हूं, वे तो बुद्धिजीवी माने जाते हैं। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तब आप किसी भी युक्ति के अधीन हो जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य मनोविज्ञान, तंत्र मंत्र आदि की खोज में निकल पड़ता है। परमेश्वर को त्यागने के कारण वे किसी भी क्रियाकलाप के लिए द्वार खोल देते हैं। वे किसी भी बात को ग्रहण कर लेते हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर परमेश्वर द्वारा मूर्ख सिद्ध किए जाते हैं। रोमियो पहला अध्याय 21 पद और 28 पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। पद 28, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, कि वे अनुचित काम करें। अतः ऐसे व्यक्ति गड्ढे में गिर जाते हैं। यशाया अध्याय 47 पद 14 और 15। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे, वे अपने प्राणों को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। वो आग तापने के लिए नहीं, ना ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है, वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं, उनमें प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई ना रहेगा। ये समस्त ज्योतिषी और तांत्रिक स्वयं को ही नहीं बचा पाएंगे, तो वे आपको क्या बचा लेंगे?